अब सवाल पैदा होता है कि ये जो वाक़या करबला है इसकी असल क्या है। थोड़ी सी बात, ज़्यादा तो ज़रूरत ही नहीं। पहली बात देखिए कि ये हक और बातिल की जंग नहीं थी, ये एक सरकमस्टांसिस के तहत होने वाला वाक़या था। आप में जिन्होंने भी सीरत पढ़ी है ना, वो मेरी बात बहुत जल्दी समझेंगे और बाकी बाद में समझ जाएंगे जब सीरत पढ़ेंगे। ग़ज़वे बदर कैसे हुई थी किसी को पता? दैट वॉज जस्ट लाइक एन अनप्लान्ड जंग, ऐसे ही है ना। गए कुछ और सोच के थे सहाबा इकराम, हो कुछ और गया, वरना तो यकीन करें कि जो रह गए थे उन्होंने भी चल पड़ना था। वो तो ऐसे ही गए थे कि देखते हैं कि रास्ते में हमारा सामान है, तो अगर उनसे अपने काफ़िले का सामान हम वापस ले लें। वहाँ अल्लाह ने फैसले लिखे हुए थे तकदीर के, क्या अहले बदर अगर आज के बाद तुम कोई नेकी ना भी करो तो जन्नत मिले। वो तो जन्नत के फैसले थे, और लोग हसरत करते थे कि हाय पहली ही जंग में पीछे रह गए। इसी तरह से वाकया करबला कुछ भी नहीं था, ये सियासी तौर पे हालात के तहत दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की बात थी। क्या थी वो थोड़ी सी आगे बता दूंगी, लेकिन अभी आप मेरे साथ साथ चलिए। क्योंकि अगर ये वाकई हक और बातिल की जंग होती तो क्या उस वक़्त और सहाबा किराम नहीं थे? हज़रत इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, हज़रत अनस, जिन पे दौरे खिलाफत शुरू, क्या वो हज़रत हसन और हुसैन या हसन के साथ ना निकलते? ये बात आज हमारे तक तरोड़ मरोड़ के कुचले हुए सच को पेश किया गया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के ज़िंदगी में ही एक ऐसा गिरोह शुरू किया गया। ये असल में बात जो मैं आपको लंबी चौड़ी ना करूँ तो मुख्तसर बात कर दूँ ना, ये वही शैतान का ख्वाब था जो उसने आदम को दुनिया में भेजते वक्त देखा था, और अल्लाह के साथ कसमें खाकर कहा था कि मैं आदम की ज़ुर्रियत को पकड़ूंगा, दाएं से भी आऊँगा बाएं से भी आऊँगा, सूरत अल अराफ में कहा। और सूरत बनी इसराइल में क्या कहता है कि मैं इनको हर तरीके से बहकाऊँगा। ये शैतानी वार था, ये बिल्कुल दो सहाबा के बीच में होने वाली एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हुआ क्या, 3 शाबान 4 हिजरी, अल्लाह के नबी के दामाद और आपकी बेटी फातिमा और अली के घर में दूसरा बेटा पैदा होता है, जिसका नाम अल्लाह के नबी सल्लम ने हुसैन रदी अल्लाह अन्हो रखा। आप अपने इस नवासे से बहुत मोहब्बत करते थे, अल्लाह के नबी आपके खुश होने से खुश होते थे और आपके रोने से परेशान, और आपसे जुदाई के ख्याल में बेताब हो जाते थे। आपने फरमाया कि हसन और हुसैन मेरी दुनिया की बहार हैं, ये बुखारी के अल्फाज हैं। और आपने हज़रत हुसैन की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह ने इनको जामेउल सिफ़ात बनाया है, यानी एक बंदे में इतनी सिफ़ात जमा हो जाए, क्या इबादत में, रियाजत में, सखावत में, फ़याज़ी में, शुजात में, बहादरी में, इल्मी मैदान में, फसाहत में, बलागत में, कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता था। जब इल्म की महफ़िलों में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो बैठते तो उनमें वक़ार होता, हिकमत होती, मतानत होती, तहम्मुल होता। अक्सर पैदल हज पे जाते थे, तमाम कुब्बार सहाबा यानी अल्लाह के नबी के साथी जो थे वो सब आपके साथ मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आते थे। हर दौर के खलीफ़ा राशिद यानी चार ही है ना, चारों खलीफ़ा राशिद ने अपने अपने अदवार में मुख्तलिफ मौके पे आपको कीमती तहाइफ दिए, हदायत दिए, आपको हमेशा अप्रिशिएट किया, और आपने हमेशा अपनी खिदमात इस्लाम के तहफ्फुज़ और उसकी बका के लिए पेश की। हज़रत हुसैन मुख्तलिफ इस्लामी लश्करों में शरीक हुए, कुफार के मुकाबले में रहे, हत्ता कि आपको कहते हैं कि जब हज़रत उस्मान का दौर चल रहा था तो मदीना में जब बिलवाइयों ने हमला किया तो हज़रत उस्मान के घर के बाहर पहरा कौन दे रहा था? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो दे रहे थे। 3 नाम ले लें वाकया करबला की जो बातें लोग करते हैं, बल्कि 4 नाम लोग लेते हैं, हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा और हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हो और यजीद। ये 4 किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द ये कहानी चलती है। पहली बात देखिए कि अगर आप हसन और हुसैन दोनों को जमा कर लें तो उनके मुकाम पे कोई नहीं पहुंच सकता, और अगर दोनों में भी तकाबुल करें तो हज़रत हुसैन के मुकाम को हसन भी नहीं पहुंच सकते। क्यों? दोनों सहाबी थे और हज़रत हुसैन बड़े थे, और जो बच्चा बड़ा होगा उसने نفس سلم کو زیادہ دیر دیکھا ہوگا نا، یعنی اگر آپ تقابل کریں تو ان چاروں میں سے سب سے اعلیٰ مقام حضرت حسین کا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حضرت حسن کا تھا، پھر اس کے بعد مقام معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا، پھر یزید کا مقام تھا. دیکھیے، جب تک آپ تحقیقی ذہن نہیں رکھیں گے، اوپن مائنڈڈ ہو کر نہیں سنیں گے، سمجھ نہیں آئے گی. حسن اور حسین دونوں کو آپ جان گئے، اللہ کے نبی ان کو گرتا دے کر ممبر سے اتر آئے اور آپ نے جلدی سے ان کو پکڑا، اور یہ سرخ رنگ کی قمیضیں پہن کر بچے تھے جب تو کھیل رہے تھے، تو اللہ کے نبی کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں تو خطبہ دے رہا ہوں. اور جب اپنے ان بچوں کو چپ کرایا تو واپس ممبر پہ آئے اور کہا کہ ان نوام والکم و اولادکم فتنہ. یاد ہی نہیں رہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے اللہ کے نبی کے ممبر سے اٹھ کے آ گیا ہوں. جیسے ماں پڑھا رہی ہو تو بچہ گرے تو ماں اٹھ کے پکڑے گی نا، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. حضرت معاویہ کون تھے، کس کس کو پتا، ان کا نسب کسی کو پتا، کس کے بیٹے، کس کے بھائی بہن کیا تھے؟ تو پھر ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے بحثوں کی. یزید کون تھے، نہیں پتا ہمیں. جی، تو معاویہ کس کے بیٹے تھے، ابو سفیان کے بیٹے تھے. دیکھیے، امیر المومنین تھے. حضرت معاویہ اپنی زندگی میں صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ، یہ بھی نام آپ پڑھیں گے، ان کی تحریک سے ولی عہد، جب حضرت معاویہ اپنی خلافت کا عرصہ پورا کر چکے تو مغیرہ بن شعبہ کے مشورے سے یا ان کے موٹیویٹ کرنے پہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بیعت کے لیے مقرر کیا. یہ کام سا سلسلہ چلتا ہے. شام میں رہنے والے، کیونکہ اس دور میں اسلام شام اور عراق تک پہنچ چکا تھا، سب نے ان کی بیعت کو قبول کیا. یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے ایک باپ اپنے بعد اپنے بیٹے کا نام لے لے کہ میرا بیٹا اس قابل ہے کہ میرے بعد خلیفہ بن سکتا ہے. لیکن مدینہ میں رہنے والے لوگوں میں سے حضرت حسین، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، یہ تین بڑے صحابی تھے، انہوں نے اس نامینیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے. جب وصال کا وقت آیا امیر معاویہ کے، کیونکہ وہ دنیا سے جانے والے تھے، انہوں نے یزید کو وصیت کی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق میرے بعد حضرت حسین کو تمہارے مقابلے پر امادہ کریں گے. اگر ایسا ہوا اور تم مقابلے میں کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا، اور اس قرابت کا جو اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت حسین کو ہے اس کا احترام کرنا، اور ان کا مسلمانوں پر بڑا حق ہے. یعنی خود ہی کہہ دیا بیٹے کو. تو آپ جانتے ہیں نا کہ ووٹنگ میں بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں، یہ بات ہو رہی ہے. صرف ایک سیاسی ایشو تھا، نہ یہاں حق ہے نہ باطل ہے، نہ کوئی اسلام کے خلاف ہے نہ اسلام سے اپوزٹ ہے، یہ سارے کے سارے مسلمان تھے. یہ وہی جنگیں ہیں جو حضرت علی اور معاویہ میں بھی ہو چکی تھیں پیچھے، یہ تو ہوتی رہیں گی. یہ آج آپ کے مسجدوں کے بیچ میں جھگڑے نہیں ہیں، تو ضرور آپ نے ایک مسجد والے کو جہنم میں پہنچانا ہے. یہ دو دین کا کام کرنے والوں کے بیچ کی چپکلش نہیں ہو سکتی، ہونی نہیں چاہیے، میں نہیں کہتی ہو، لیکن ہو گئی بالفرض تو کیا آپ ضروری ہے کہ ایک کو آپ آگ میں ڈالیں تو ایک کو جنت میں ڈالیں؟ یہ صرف ہماری نیرو مائنڈڈنیس ہے. خیر، قصہ مختصر یہ ہے کہ وہی ہوا جو ہونا تھا. رجب 60 ہجری میں امیر المومنین حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے. یزید چونکہ نامینیٹ ہو چکے تھے، ان کو خلافت پہ بٹھا دیا گیا، اور جو لوگ موجود تھے ان سے کہا گیا کہ آپ بیعت کیجیے. یہ جتنے بھی حجاز کے رہنے والے لوگ تھے جو میں نے آپ کو بتایا، بڑے تھے، جو اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے تھے، انہوں نے اس بیعت کا انکار کیا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یزید بعد والے لوگوں میں سے ہیں، تو بڑے صحابہ کی موجودگی میں ان کو رکھنا مناسب نہیں. دیکھیں، یہ ہمارا اسکول ہے نا، آپ اس کو سمجھیے. کچھ ساتھیوں کو آپ ڈے ون سے دیکھ رہے ہیں، تو کچھ ہو سکتا ہے 2 سال سے اس قافلے میں شامل ہوں. کل کسی بڑے منصب پہ کسی نئے بندے کو ڈال دیا جائے تو ایک جنرل رائے آ سکتی ہے کہ بھئی آپ نے پرانے اور بڑے اور جو تجربہ کار لوگ تھے ان کو چھوڑ کر ایک نئے بندے کو کیوں ڈال دیا. بس اتنی سی بات ہے، اگنور اٹ، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. خیر، قصہ مختصر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اہل کوفہ کی طرف سے سینکڑوں خط حضرت حسین کو بھیجے، مطلب پرووک کیا کہ آپ اس کے اوپر کچھ قدم لیجئے، اٹھائیے اور دیکھیے. اس میں لکھا کیا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، ہم نے ابھی کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. یہ تفسیر طبری میں لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، صفحہ 262 پہ. अब हुआ क्या कि हज़रत हुसैन का अपना कोई इरादा नहीं था कि मुझे खलीफा बनाया जाए, लेकिन कहते हैं कि सवारियों पर रखकर, यानी कहना चाहिए कि डब्बों के डब्बे और संदूकों के संदूक, खतों के उनको पहुँचाए गए। अवाम चाहती थी कि आप लीडर बने, वे खुद नहीं चाहते थे। इनको लोग नॉमिनेट कर रहे थे, तो ओमान बिन बशीर कूफा के हाकिम थे। हज़रत हसैन जब ये चपकलश मुस्लिम गिरोहों में देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ज़रा हकीकत मालूम करें। देखिए उस वक्त कम्युनिकेशन इतना आम नहीं था कि यहाँ बैठ के पता चले आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है या अमेरिका में क्या हो रहा है। इन्होंने मुस्लिम बिन अकील, कौन थे वो, मुस्लिम बिन अकील इनके कज़न थे, उनको कूफा भेजा कि जाइए ज़रा देख कर आए कि हालात क्या हैं। जब इनको कूफा भेजा, और आपका मौक़ क्या था कि सिर्फ अहले शाम की बैत पूरी उम्मत पर लाजिम नहीं है, ठीक है, यानी हम किसी एक के लिए नहीं है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। किस्सा मुख्तसर, हज़रत हुसैन मुसलमानों के गिरोह में वो एक मुतवक्को जो रस्सा कशी थी उसको रोकना चाहते थे, भाई कि जब एक का नाम आ गया तो आप उसको ले लीजिए। हुआ क्या कि जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे, तो 12,000 कूफियों ने उनके हाथ पे बैत की, और साथ ही हज़रत हुसैन को हालात से बाखबर करने के लिए ख़त लिखा कि आप भी आइए, यानी असल से यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। हज़रत हुसैन को कूफा बुलाया गया, आइए, और उस दौर में जो वहाँ के गवर्नर थे उनका नाम था उबैदुल्ला बिन ज़ियाद, वो अमीरे कूफा थे, और वो थोड़े से दुनिया की रौनक और चमक चौंध से मुतासिर हो चुके थे। किस्सा मुख्तर, बड़े बड़े सहाबा ने हज़रत हुसैन को रोका, मत जाइए। इब्ने ज़ुबैर, अभी आपको तीन नाम बोले हैं ना, इब्ने उमर, इब्ने ज़ुबैर हैं, इन्होंने हज़रत हुसैन से कहा कि हमें बू आ रही है, आप जिन लोगों में जा रहे हैं इन्होंने ही आपके बाप को शहीद किया था, आप मत जाइए। हज़रत हुसैन की नीयत क्या थी कि उम्मत मुस्लिमा में बिगाड़ ना पड़े, दोस्त ग्रो ना बन जाए। देखिए ना, आज तो मुल्क शाम का एक अपना हुक्मरान होगा और सऊदी अरब के अपने हुक्मरान होंगे, उस दौर में ऐसा नहीं था। ये चाहते थे कि एक ही खलीफा के हाथ पे सारे मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं। बस ये है वो टर्निंग पॉइंट। अगर हज़रत हुसैन ना जाते, वो गए थे अच्छी नीयत से, लेकिन धोखा हुआ, उन्होंने बहाने से बुलाया, वो दुनियादार हो चुके थे, वो कहते थे कि हज़रत हुसैन को ख़त्म कर दो तो वो यजीद के मुकाबले में एक दूसरा नाम ख़त्म हो जाएगा। और उबैदुल्ला को पता था कि अगर हज़रत हुसैन सामने आ गए तो कुछ ऐसे जुर्म थे बीच में कि इनकी गर्दन कटनी थी। ये सियासी जंग थी, कोई इसमें किसी और तरह का मामला नहीं था। तो बहरहाल ज़िलहज की कहते हैं कि 3 या 8 तारीख थी, हज़रत हुसैन कूफा रवाना हुए। नाम मैं आपको लिखा सकती हूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, इब्ने उमर, उमर बिन अब्दुर्रहमान, उमर के बेटे यानी अब्दुर्रहमान, फिर अब्दुल्ला बिन जाफ़र, इन सब ने लोगों के मना करने के बावजूद आपका साथ दिया, निकले कि सफ़र करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि हज़रत हुसैन जब हाजिस, एक जगह है हाजिर, हालिफ जीमरा मुकाम में वहाँ पहुँचे, तो अहले कूफा के नाम एक ख़त लिखा। ख़त क्या लिखा कि कैस बिन मसरूर के हाथ वो ख़त भेजा और कहा कि मैं आ रहा हूँ, और जिस काम के लिए इनको अहले कूफा ने बुलाया था उसमें मेरी पूरी कोशिश है। मगर हुआ क्या कि वो पैगाम लेकर जो कैस गए उनको कत्ल कर दिया गया, सबसे पहले उनको शहीद किया गया। अब जा ये कूफा रहे थे, लेकिन जब उनकी शहादत की खबर मिली तो समझ आ गई ना कि मामला गलत है, तो कूफा की बजाय करबला चले गए। करबला अलग जगह है, कूफा अलग जगह। जब उधर गए तो उस वक्त आपके साथ 45 45 सवार और 100 पैदल लोग भी थे। उमर बिन साद करबला में उबैदुल्ला बिन ज़ियाद की तरफ से कासिद बनकर हज़रत हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए, तो आपके सामने 3 ऑप्शन रखी। अब देखें ना कि उनके सामने भी तो बातें थी ना, 3 बातें रखी। पहली बात है, मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊँ। दूसरी सूरत है कि मैं यजीद के पास जाऊँ और अपना मामला उससे तय कर लूँ, जो मेरे मामले में वो बोल दें। और तीसरी बात है कि मुझे मुसलमानों की किसी सरहद पर पहुँचा दे, जो हाल वहाँ के आम मुसलमानों का होगा मैं भी उसी में ज़िंदगी बसर कर लूँगा। यानी पूरी सरकमस्टांसिस को देखकर हालात और ये सारी बातों पर रहा, लेकिन उमर बिन साद नाम के एक शख्स की कोशिशों से मामले को बेहतर करना चाहा। एक शख्स था शिमर जिल जोशन, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ़ आपको हकायक इसलिए सुना रही हूँ कि ये बातें सिर्फ़ अभी तक लफाजी में ही हुई हैं। और इस वाक़े को ऐसे पेश किया जाता है कि दुनिया में ये पहले शहीद है, और शहीद होना बहुत बड़ा गम है, और ये गम ख़त्म ही नहीं हो रहा। और इसकी वजह से सबसे बड़ी बात है कि उम्मत को तोड़ा जो जाता है। और हर साल आप देखिए मुहर्रम में, जो मुझे दुख की बात लगी कि अभी नया नया हमारा कोर्स शुरू हुआ है पाकिस्तान में, माशाल्लाह एक एक दिन कीमती है, लेकिन हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि 9 और 10 मुहर्रम को फ़ोन्स बंद, इंटरनेट बंद, सवारियां बंद हैं। कर्फ्यू वाला हिसाब होता है ये 2 साल से पिछले पाकिस्तान में चल रहा है। मुहर्रम के महीने में आप ये कुछ करेंगे? हुरमत के महीने में करेंगे? सिर्फ लफ्ज़ मुहर्रम देखिए ना, मुहर्रम का मतलब क्या है? हुरमतों वाला, इज्जत वाला, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, किसी का खून लेना दूर की बात, आप अपने सीने पे आग लगाते हैं या अपने आप को खून रोज करते हैं, ये सिर्फ एग्जेजुरेशन है। सारी बात का खुलासा ये है कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी, 61 हिजरी को वाकया करबला पेश आया, और हज़रत हुसैन को आपके बच्चों और आपके जान निसारों समेत 72 अफराद को शहीद किया गया, और इन शहदा को एक रोज़ बाद फिर दफन किया गया, और अहले बैत की जो ख़वातीन बची थी और शहदा के जो बाकी लोग थे उनको भी यजीद के दरबार में लाया गया। ये सारा मामला आपका मेरा सुनना सुनाना पढ़ना बातें करना, आपको मुझे एक बात का जवाब देना है खुद से और लेना है। जो भी इस मामले को समझ रहा है या समझना चाहता है, वो जो करके गए, जो उनकी ज़िंदगी थी वो क्या थी, और आज हमारी ज़िंदगी क्या है? क्या हम अल्लाह के उस दीन को उसी तरह से कबूल किए हुए जैसे हसैन ने किया था, हसन ने किया था? नमाज़ों से शुरू कर लीजिए, तौहीद से शुरू कीजिए। यदि जो आज इस मोहब्बत में कोई काम करते भी हैं, तो क्या उनकी ज़िंदगी और उनकी सीरतें हज़रत हसैन और हुसैन जैसी हैं? और क्या उनका हलाल को हलाल और हराम को हराम कहना? और आपको पता है कि नबी सल्लम की वाज़ बात है और कहते हैं कि हज़रत हुसैन की ज़िंदगी में ही ये सारी बातें थी। उन्होंने अपनी बहन को वसीयत की थी जाने से पहले कि मेरी बहन, मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि मेरी शहादत पे ना कपड़े फाड़ना, ना सीना खूबी करना, आवाज़ ना बुलंद करना, रोना और चिल्लाना ना। हम उस अमल को तो देखें ना, हम उस किरदार को तो देखें ना। तो ये सिर्फ शैतान का एक फैलाया हुआ जाल है जिसको सामने रखते हैं। आज बहुत सारे लोग मुहर्रम के आते ही ऐसी बहसों में पड़ जाते हैं, कौन सही कौन गलत, ये है वो है। 3 बातें करके मैं अपने मौजू को पलटाती हूँ। पहली बात यह है कि हज़रत हुसैन और उनके अहले बैत की मज़लूमाना शहादत, क्या उनके साथ जुल्म हुआ है या अल्लाह उनको इसका बदला नहीं देगा? पहली बात समझिएगा, अगर करबला में वाकई जुल्म और उद्वान की तारीख रकम हुई है और अहले बैत को बेदर्दी के साथ शहीद करके अल्लाह के अजाब की दावत दी गई, लेकिन क्या क़यामत के दिन नबी सल्लम अपनी पूरी उम्मत से अपने नवासे के खून का सवाल करेंगे? और अगर सवाल किया तो किस उम्मती में इसका जवाब देने की हिम्मत है? अगर आपने पूछ लिया कि मेरी वजह से तुम सब के सब दुनिया आखरत में सुरखरू हो गए, तुमने मेरे नवासे की मोहब्बत में हर साल अपने आप को इतना तकलीफ़ दे दिया और किया, तो आओ तुम्हें सबको मैं आज जन्नत दे दूँ, तो क्या आपके दिल को ये बात लगती है? नहीं लगती। वो जो कर गए सो कर गए, आपके मेरे लिए काम क्या कि हम उनके नक्शे कदम पे चले। जो हज़रत ईसा के साथ नसारा ने किया ना, वही है यहाँ भी, शख्सियत परस्ती। और सबसे बड़ी बात कि बस कुछ दिन कुछ कर लो, फिर सारा साल जो मर्ज़ी करो। सही दीन को दूसरी तरफ कर देना और दूसरी तरफ ले जाना। दूसरी बात आप देखिए कि सानहे करबला के ज़िम्मेदारान कौन थे, कौन लोग हैं जिन्होंने ये सारे की, वही नाम है जो मैंने अभी बीच में लिए, सियासी तौर पे ये वो लोग थे, उनका मामला अल्लाह के साथ है। अगर हज़रत हुसैन और हसन शहीद हुए तो अल्लाह उनको जन्नतों में ले गया। आपका मेरा ईमान होना चाहिए कि वो अल्लाह के पास वो सारे दर्जे पाएंगे जो अल्लाह ऐसे लोगों को देता है। लेकिन जिन्होंने इस मामले में इख्तलाफी बातें की, धोखे दिए और गलत बातें की, क्या अल्लाह ताला उनको नहीं पकड़ेगा? और तीसरी बात क्या है कि आज मेरे और आपके लिए हम सब, क्या 61 हिजरी बोला है ना आपको, नबी सल्लम के दुनिया से जाने के 50 साल बाद का सिर्फ एक वाक्या हमारी पहचान कैसे बन गया? हज़रत उस्मान का भी फिर गम करें, हज़रत उमर का भी गम करें, हज़रत अली का भी गम करें, तीनों शहीद हुए थे, बड़े बड़े नाम है ना। फिर हम बीबी सुमैया की शहादत का गम करें क्योंकि पहली शहीदा थी, औरत थी, हज़रत जासिर का करें, फिर हम मुसअब बिन उमैर की शहादत का गम करें, हज़रत हमज़ा की शहादत का गम करें, तो 365 दिनों में 365 दिन हमारे सिर्फ गम में गुजर जाएंगे। इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम आपको मुझे प्रोडक्टिव बनना सिखाता है। हाँ, आज के दिन इस मौके पे हम सब एक नियत करें। पहली बात है, हमने दीन को सीखना है, तारीख़ को पढ़ना है, मुस्लिम हिस्ट्री को जानना है। आज हमारे बच्चे मुस्लिम हिस्ट्री नहीं जानते, जो मेरा ख्याल है कि आज के मौजूदा मुसलमानों के पास जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, वो हिस्ट्री है। आज के दौर में तो मुसलमान दुनिया में कोई खूबसूरत इजाफा ही नहीं है। ना आईफोन हमने बनाया, ना टोयोटा कंपनी ओन्ड बाय मुस्लिम, और ना मर्सिडीज़ इज़ फ्रॉम मुस्लिम्स, और ना कोई मुस्लिम मुल्क इतना बड़ा दुनिया में कोई कारनामा कर रहा है कि लोग कहें कि यस वी आर मुस्लिम। आज की नस्लों को अगर मैंने और आपने बचाना है, तो उसका तरीका ये कि उनको हिस्ट्री से जोड़ें। जो कौम अपनी तारीख और अपनी हिस्ट्री से कट जाती है या अपनी नस्लों को काट देती है, तो उनके बच्चों के नसीब में सिर्फ शर्मसारगी है। आज हमारे बच्चों के सर झुके हुए हैं, उनको लगता है कि हम बड़े ही दुखी, हम बड़े ही बुरे, वी आर टेररिस्ट। कहीं कोई इमारत गिरती है तो गम पड़ जाता है कि अल्लाह किसी मुसलमान का नाम ना आ जाए। कहीं कोई जहाज़ गिरता है तो गम पड़ जाता है कि कहीं कोई मुसलमान का नाम ना आ जाए। आज तुम्हारे मुसलमान बच्चों को गालियाँ मिलती हैं, नेट खोल लीजिए तो गाली, टेलीविज़न खोल लीजिए तो हम बुरे, मीडिया चैनल खोलें तो हम पे इल्ज़ाम है। महरूम है हमारे बच्चे, एहसास कमतरी का शिकार है। इससे निकालने का एक रास्ता है, इल्म से जोड़िए।
अल्लाह ताला आपको मुझे हक़ पे रखे। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।